मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताई जाति अरहंता दिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग इस संसार में अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख का अनुभव करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। हम सबकी ये कोशिश होती है कि हमारे जीवन में दुख कम हो और सुख की तादाद ज़्यादा हो, पर हमारे साथ मजा ये है कि दुख के उपाय जितने हम करते हैं सुख के उतने ही अल्प उपाय हमारे होते हैं। पुण्य के जितने काम हम करते हैं वो बहुत अल्प हैं और चाहते हम फलस्वरूप बहुत हैं। पाप के काम हम बहुत करते हैं पर फल हम उनका अल्प ही चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और यही हमारा जो सोच का ढंग है या हमारा जो असंतुलन है वो हमारे संसार भ्रमण का कारण बना हुआ। कोई अपना जीवन अच्छा बनाना चाहे और गलत रास्ते पर चले तो क्या उसका जीवन अच्छा बनेगा? जिन कारणों से जीवन में दुख आते हैं उन कारणों को कोई ना छोड़े और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहे तो क्या उसका जीवन अच्छा बनेगा? आचार्य भगवंत हमें सलाह दे रहे हैं, हम अपने जीवन को अगर तीर्थंकर जितनी ऊंचाई देना चाहते हैं उनके जितना अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम संसार से डरें, संसार से भयभीत रहें। संसार से डरना या भयभीत रहना इसका नाम संवेग है, अवीक्षण संवेग, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। संसार से डरने के मायने संसार से पलायन करना नहीं है। संसार से न पलायन करना है न संसार में आसक्त होना है। संसार किस चीज का नाम है? संयोग वियोग का नाम संसार है, मेरे राग द्वेष का नाम संसार है, मेरी कषायें मेरे पाप का नाम संसार है, मेरी अज्ञानता का नाम संसार है। मुझे संसार से भयभीत होना यानी राग द्वेष से बचना, संयोग वियोग के बीच समभाव रखना, पाप से डरना, कषायों से डरना, अज्ञान से दूर रहना, संसार से डरने का ये अर्थ है। लेकिन हम संसार के दुखों से बचना तो चाहते हैं, लेकिन उन दुखों के कारणों से बचना नहीं चाहते। जो दुख से भयभीत है संसार के, वो संसार के दुख को बढ़ाने वाले कारणों से भी बचे। और कारण यही है संसार बढ़ाने के, मेरा राग द्वेष, मेरी कषायें, मेरा संयोग वियोग में होने वाला हर्ष विषाद, मेरी अपनी अज्ञानता, मेरा अपना मोह, मुझे इससे बचना चाहिए, मुझे इससे भयभीत रहना चाहिए, मुझे इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। ये निरंतर हमारे मन में अगर भावना बनी रहती है, विचार बना रहता है, तो यही विचार, यही भावना हमें उस ऊंचाई तक, उस अच्छाई तक पहुंचाने में कारण बन सकती है। आचार्य महाराज एक उदाहरण सुनाया करते हैं कि किसी व्यक्ति के यहां पर कोई मेहमान आए, मेहमान का कमरा उनके घर में अलग से उन्होंने बना रखा था। आते ही कहा कि आप अच्छे आए, पधारो, ये कमरा है, इसमें आपके रहने की सब व्यवस्था है। और जब वो उस कमरे में सोने की तैयारी करने लगे तो उन मेहमान से कहा कि भैया, और तो इसमें सब सुविधाएं हैं, सब अच्छा है, लेकिन आपके आने से थोड़े पहले इस कमरे में एक सांप घुस गया था, और तो बाकी सब ठीक। अब बताइए, उस मेहमान को उस कमरे में नींद आएगी, रहा जाएगा? तो कमरे से भयभीत है या कमरे में जो विपत्ति है उससे भयभीत है? किससे वो सावधान रहना पसंद करेगा कि वह सर्प मुझे क्षति ना पहुंचा दे? उदाहरण तो छोटा सा ही है, कोई उस कमरे में सोना पसंद नहीं करेगा, अगर रहना भी पड़े तो सजग होकर के, सावधान होकर के रहेगा। यही तो हमारे जीवन के लिए भी उपदेश है। इस संसार में चारों गतियों में भ्रमण करने का एक ही कारण है, मेरा अपना ज्ञान, मेरा अपना मोह, मेरी अपनी आसक्ति, जो मुझे विपत्ति का कारण बनती है। तो अगर मुझे संसार में रहना है तो मुझे सावधान रहना चाहिए इन सब विपत्ति डालने वाली चीजों से। मुझे संसार में गाफिल नहीं होना चाहिए, जैसे कि कमरे में सांप घुस जाने पर उसमें रहने वाला गाफिल नहीं हो सकता, सावधान रहता है। ठीक इसी तरह इस संसार में रहने का हमारा ढंग क्या होना चाहिए, उससे मालूम पड़ेगा कि हमारे मन में इस संसार से बचने का कोई विचार या भावना है या नहीं है। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम भुंजे जभासेच। मुनि महाराज आचारी भगवंतों से पूछ रहे हैं कि भगवन, यहां इस संसार में कदम कदम पर राग द्वेष हैं, मैं जरा सा भी चूक जाऊं तो कर्म के बंधन से लिप्त हो जाता हूं, अत्यंत भयभीत हूं मैं इस कर्म के बंधन से, मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं, कैसे सोऊं, आप मुझे बताएं। तो कहते जदम चरे ददम चिट्ठे जदम भाषेश भुंजे छे। अरे भाई प्रयत्न पूर्वक सावधानी पूर्वक चलो, आओ जाओ बोलो, आहार ग्रहण करो, सो, जो भी यहां क्रियाएं करो मन वाणी और शरीर से, जदम यतनाचार पूर्वक अत्यंत अप्रमत्त और सावधान होकर होकर के यहां रहो, जदम न पापम, ऐसे जिसमें कि पाप का बंध ना हो। इस संसार में हम ऐसे रहें जिससे कि हम संसार बढ़ाने वाले कारणों से लिप्त ना हो पाए, क्योंकि मेरी कषाएं, मेरे पाप प्रवृत्ति, मेरा अज्ञान मुझे इस संसार में लिप्त करके रखता है, कर्म के बंधन से लिप्त करके रखता है, तो मैं इनसे सावधान रहूं। एक युवक पहुंचता है साधु महाराज के पास कि भगवान संसार में कैसे रहूं, कुछ समझ नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ रह के दो चार दिन देख लो, फिर तुम्हें जैसा रहना हो वैसा रहना। संसार में रहना तो पसंद नहीं है, लेकिन रहना पड़े तो कैसे रहना, जिससे कि फिर संसार के लोग कहें कि जाओ तुम्हारे लाख नैया जो भगो तो तैसे। हाँ, ऐसा जैसे कोई पहली कक्षा में पास हो जावे तो गुरुजी उसको फौरन दूसरी कक्षा में प्रवेश दे देते कि जाओ आगे बढ़ो, अब तुमने पढ़ लो। हम वे लोग हैं जो संसार में अत्यंत असफल हैं, इसलिए बार बार संसार की ही कक्षा में बैठना पड़ता। जिस दिन पास हो जाएंगे उस दिन कोई नहीं बैठाएगा, कहेगा जाओ पास हो गए संसार से। संसार में पास होने की क्या तरकीब हो सकती है? संसार के इम्तहान में कौन पास हो सकता है? संसार तो राग द्वेष रूप है, हमारा इम्तहान लेता है, और इम्तहान में वो पास होता जो राग द्वेष के बीच भी और वीतरागता बनाए रखता है, जो संयोग वियोग के बीच भी साम भाव बनाए रखता है, वो इस संसार के इम्तहान में पास होकर के और आगे निकल जाता है। यही तो वो जानना चाहता था कि कैसे रहूं इस संसार में जिससे कि इस संसार के बंधन में ना बंधूं। वैसे तो राजा जनक का उदाहरण सर्व प्रसिद्ध है, उनसे शिक्षा लेने के लिए एक साधु जी पहुंचे थे अपनी गुरु की आज्ञा से कि जाओ संसार में रहना सीखना हो तो जनक महाराज से या कि भरत राजा से सीख करके आओ। कौन से वाले भरत? चक्रवर्ती भरत नहीं, राजा रामचंद्र जी के भाई भरत से सीख करके आओ। राज गद्दी पर होते हुए भी राज्य की मालकियत अपने हाथ में नहीं रही, मालिक तो रामचंद जी ही हैं, मैं तो सिर्फ उनका सेवक हूं, राज काज कर रहा हूं अत्यंत अलिप्त होकर के। संसार में रहने की यही एक बहुत सहज सी प्रक्रिया है, जो जितना उसमें अलिप्त होकर के निकल जावे तो निकल सकता है, वरना काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, बहुत मुश्किल है कि वो उस कालिक से बच पाए। राग द्वेष की मलिनता से इस संसार में रहते हुए बचना अत्यंत दुस्साध्य है, सारी तपस्या वही है। अब वो युवक पूछ रहा है कि कैसे रहूं, तो बाबा जी ने कहा कि मेरे साथ रह के देख लो। पहले दिन देखा तो बहुत लोग आए, बाबा जी की प्रशंसा करी और प्रशंसा करके उनके गुणगान करके आरती उतार करके और वापस लौट गए। बड़ा अच्छा लगा। उस युवक को कह दिया था कि नो रिएक्शन एट ऑल, कोई प्रतिक्रिया मत करना, देखना चुपचाप। कौन क्या कर रहा है, ये सिर्फ अवलोकन करना, अपना मंतव्य व्यक्त मत करना। पर उसके मन में तो बार बार हो रहा था कि इन सब को धन्यवाद दूं कि आपने बाबा जी की इतनी प्रशंसा करी, इतने गुणगान करे, इतनी बढ़िया आपने आरती गाई, आपकी पीठ थपथपाए। लेकिन अब बाबा जी ने कह दिया है कि कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया मत करना, नहीं करी, चुपचाप बैठा रहा, भीतर भीतर अपने आप को रोके हुए। दो एक दिन बीते, उसके बीच में कुछ लोग एक दिन अचानक आ गए, बाबा जी को घेर लिया, अब शब्द कहने लगे, गालियां देने लगे, कहे के बाबा जी, अब मैं अगर वो सब चीजें यहां पर कहूं तो उसमें और हम में क्या अंतर होगा, इसलिए समझ जाओ कि क्या क्या कहा होगा। जिसको आदत हो वो समझ जाएगा, अपन को आदत नहीं है। क्या क्या कह जाते हैं अपन सहज रूप से ही पता भी नहीं लगता, कितने कमेंट्स कर देते हैं अपन सहज रूप से चौराहे पर कहीं भी खड़े होकर के बैठ करके, चाहे जिसके बारे में, महान आत्माओं के बारे में भी किसी को नहीं छोड़ते अपन तो। उन क्षणों में सिर्फ हम बड़े हो जाते हैं, बाकी सब तो निंदनीय ही होते हैं जिन क्षणों में हम इस तरह की कोई चर्चा वार्ता करने में रुचि लेते हैं और अपना संसार बढ़ा लेते हैं। संसार से पार होने वाला थोड़ी बहुत गलती अगर करता भी है तो अपनी चूक सुधार करके और संसार से पार हो जाता है। हम अपना संसार बढ़ा के उसी संसार में और रहे आते हैं, जरा विचार करना, ऐसे बढ़ता है संसार, ऐसे फेल होते हैं हम संसार के इम्तिहान में। कौन होगा जो कि भावना भाएगा इस संसार से पार होने की, वही जो भावना भाता है वही इस संसार से बचने के उपाय करेगा कि नहीं करना मुझे राग द्वेष, नहीं पढ़ना मुझे इस प्रपंच में। लेकिन अब उसने तो अपने आप को बहुत रोक रखा था, मन में तो ये आ रहा था कि एक एक को बता दूं कि तुमने समझ क्या रखा, हमारे बाबा जी को उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, ऐसे अपने आप को रोके हुए था। बाबा जी को बार बार देख रहा था कि आप जरा सा तो इशारा करो, ये सब आपको ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, मैं तो नहीं सहन कर सकता, इनको अभी बाहर करके आऊं, आप जरा सा इशारा करो। लेकिन बाबा जी हैं कि मुस्कुराए चले जा रहे हैं और उसको इशारा कर रहे हैं आंख से कि चुप, मेरे पास रहना है तो चुप बैठो। वो चुप बैठा हुआ है दम साधे। तीसरे दिन बाबा जी ने कहा कि युवक, उपदेश हो चुका, चाहो तो लौट जाओ। अरे कुछ तो कहा नहीं, कुछ समझाया नहीं, और कहा कि लौट जाओ, उपदेश हो गया, मुझे तो नहीं समझ में आया कि कैसे रहना चाहिए संसार में। कहते उपदेश तो यही था, या तो अपनी प्रशंसा में गाफिल होकर के रहना चाहो तो इस संसार में रह लो, अपनी निंदा में विषाद करके इस संसार में रहना चाहो तो रह लो, और चाहो तो निंदा और प्रशंसा दोनों में समता भाव और प्रसन्नता रह के जीवन बिताना चाहो तो वैसा बिता लो। नवयुवक, ये तीनों रास्ते हैं, जैसा करना हो वैसा। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में पीड़ित सारा संसार है, लेकिन इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में साम भाव रखना, ये तो जिसके भीतर संवेग भावना आ गई है उसे ही संभव है। संवेग भावना हमें यही सिखाती है कि संयोग और वियोग के बीच संतुलन हमारा बना रहे। हम असंतुलित हो जाते हैं संयोग में गाफिल होकर, वियोग में विषाद करके। इतनी सी विद्या सीखनी है कि जब मुझे इष्ट वस्तु का संयोग हो तो मैं उसका उपयोग कर लूं, सदुपयोग कर लूं, कि अभी मेरा बहुत फेवरेबल टाइम है, मेरे सितारे बुलंदी पर हैं, मैं गाफिल ना हो जाऊं। लेकिन हो जाता हूं, मैं सावधान रहूं। जब बहुत अनुकूल समय हो तब उस अनुकूल समय का सदुपयोग यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया अपनाऊं, ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान करूं। लेकिन होता यह है कि जब सब कुछ अनुकूल चलता है तब सबसे पहले कोई चीज भूलती है तो धर्म ही भूलता है, और संसार नहीं भूलता। संसार तो सामने फैला दिखाई पड़ता है कि अब आनंद है, अब जब मेरे अनुकूल है सब स्थितियां, तब मैं एंजॉय करूंगा संसार का। जबकि होना यह चाहिए कि जब मेरे सब कुछ अनुकूल है तब मैं इस संसार से बचने का उपाय कर लूं, मैं कुछ राग द्वेष को जीतने की प्रक्रिया कर लूं, मैं अपनी श्रद्धा ज्ञान को बढ़ा सकूं। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं एडवर्स, तब भी इसके उसके पास जाता हूं, इसका उसका मुख देखता हूं कि कोई तो होगा जो इस संसार में मेरी मदद कर देगा। करते हैं कि नहीं? अत्यंत विषण होकर के घर में बैठ जाते हैं, विपत्ति आने पर क्या करूं, कहां जाऊं, तब ये नहीं सोचता कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कौन है मेरी आत्मा के प्रति रुचि, संसार से उदासीनता और कष्ट सहिष्णुता, ये है मुझे बचाने वाली और विपत्ति से। और किसने ये सलाह दी है? ये पंच परमेष्ठी ने सलाह दी है। ये संवेग का लक्षण है कि तत्व में रुचि हो, संसार से उदासीनता हो और कष्ट को सहन करने की शक्ति हो, तो समझना कि अब संवेग भावना हमारे भीतर आ गई है। कौन बचाता है विपत्ति के बीच? संवेग भावना हमें बचा लेती है कि देखो चूक मत जाना इस विपत्ति में। इस विपत्ति में हार गए, अगर विषाद कर लिया तो ये चूक कहलाएगी, और अधिक विपत्ति में पड़ोगे। दुख में दुखी होने से और अधिक असाता ही बंधती है। सब जानते हैं तत्वार सूत्र जी का सूत्र कि दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद वेद्यस्य। जितना मैं इस संसार में विपत्ति आने पर विषाद करता हूं, वियोग जन्य पीड़ा से ग्रसित होता हूं, उतना और मुझे दुख ही असाता ही बंधती है। मैं उस विपत्ति में अपने धर्म को नहीं भूलूं, अपने उस आत्म स्वरूप को नहीं भूलूं और धैर्यपूर्वक उस विपत्ति को सहन करूं और संसार की वास्तविकता का उन क्षणों में अनुभव करूं कि ये है संसार। कल तक जो मेरी मदद करने वाले मुझे जान पड़ते थे, आज वे ही मेरे से विमुख हो गए मेरी विपत्ति में। अरे ये है संसार। कल तक मैं जिसको बहुत अपना प्रिय मानता था वो आज मेरा शत्रु बन करके खड़ा हुआ है, ये है संसार। उस समय जब विपत्ति आए तब जाकर के संसार की वास्तविकता का अनुभव होता है। ऐसा यदि हम अभ्यास करें तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने जीवन को और उतनी ऊंचाई ना दे सकें जितनी कि कोई तीर्थंकर धर्म के प्रवर्तक अपने जीवन को स्वयं ऊंचा उठा करके प्राणी मात्र के जीवन के कल्याण में निमित्त बन जाते हैं। उतनी विशुद्धि हम भी प्राप्त कर सकते हैं अपने भावों के द्वारा, अपने विचारों को एक निश्चित दिशा दे करके। संवेग के मायने, एक और अर्थ है संवेग का, धर्म और धर्मात्मा से प्रीति होना भी संवेग है। संसार से भयभीत होना, धर्म और धर्मात्मा से प्रीति होना, ये दोनों ही संवेग उत्पन्न होने पर अपने भीतर घटित होने वाली स्थितियां हैं। जैसे ही हमें संसार की वास्तविकता मालूम पड़ती है तो संवेग आता है, क्योंकि क्या सूत्र जी का सूत्र है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। जगत का स्वरूप मालूम पड़ जाए तो संवेग हो जाता है। संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का एहसास होने लगे तो संवेग हो जाता है। और जैसे ही संवेग होता है तो धर्म के प्रति रुचि, धर्मात्माओं के सानिध्य की आकांक्षा बढ़ने लगती है। जैसे अपन अपने घर में उगता जाएं तो क्या करत कि चलो अब तो कहूं चलत हैं, हैं? तो भैया प्रोग्राम बनाती है कि नहीं कि अब बहुत होगा, अब तो उगता गए घर में रेत, अब कहूं चलो तनक, क्या कहती, थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा चेंज करने के लिए। भैया ऐसे ही जिस दिन संसार से उगता जाओ तो एक ही चेंज है ऊपर, सबसे बढ़िया, उतर से फिर वापस भी नहीं आना पड़ेगा। घर में तो चेंज के लिए बाहर जाओ तो घर में ही लौट के आना पड़ता है, यहां संसार चेंज करना चाहो तो एक दूसरा अनंत संसार से हट करके, और जो सिद्धत्व को अनुभव करने वालों का संसार है वो संसार तो ऐसा है कि जिसमें फिर ये संसारिक सुख दुख का अनुभव ही नहीं है, अत्यंत परम विशुद्ध आनंद की अवस्था है। चेंज करें तो फिर वास्तव में ऐसा ही चेंज करें। ये मन में धर्म और धर्मात्मा के प्रति हमारे रुचि जागृत होने से और संसार से उदासीनता होने से ये अवस्था अपने आप घटित हो सकती है। दूसरे तरह से समझ लें कि संसार में सुख जान पड़ता था, अब अपने भीतर ही सुख जान पड़ने लगे तो क्या स्थिति बनेगी। संसार में सुख जान पड़ता था सो संसार में भाग दौड़ कर रहे थे, और अपने भीतर सुख जान पड़े तो भाग दौड़ रुक जाएगी। भीतर जाने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। भीतर का मतलब जब हम कहें तो ऐसा नहीं समझना कि मैं से मुंह में से भीतर उतरने, नहीं तो आप समझो कि भीतर है कछु, हाँ नहीं तो ऐसा अर्थ भी ले, कई लोग कहते भीतर का मतलब क्या, भीतर तो कछु नहीं है, भीतर तो हड्डी है, मांस मत जाए और कछु नहीं। नहीं, भीतर का अर्थ क्या है, संसार से विमुख होना ही अंतरंग में पहुंच जाना है। ये जो पांच इंद्री और मन के विषयों में हम वाह्य में भटकते रहते हैं, वो भटकन रुक जाना ही आत्मस्थ हो जाना है, कहीं आना जाना जैसा नहीं है। कहने में जरूर आता कि भीतर जाना है, अपने आप में ठहर जाना ही भीतर जाना है। वो स्थिति हमारी बन सकती, भैया कठिन नहीं है, 5 मिनट रोज अभ्यास करो तो फिर उसी में आनंद आने लगेगा। अभ्यास की बात है कि सब प्रपंच छोड़ करके हम तो जी बैठे शांति से, हमें कोई से राग द्वेष नहीं है। ने ऊधो को लेने ने माधो को देने का जे तो अपन बुद्धू हो कहत के जो तो बुद्धू है एको कछु नहीं है। नहीं, ऐसे बुद्धू अपन को बनना पड़ेगा अगर संसार से पार होने, ने तो जब बुद्धि उद्दीमानी सब धरी रहते ही, हां सारी चालाकी संसार बढ़ाने की है, बाकी संसार घटाने के लिए चालाकी वालाकी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में स्वस्थ और प्रसन्न होकर के बैठना ही पर्याप्त है संसार से बचने के लिए। वो अपना आत्म धर्म एक बार हमारे समझ में आ जावे, अपनी आत्म संपदा एक बार हमारे समझ में आ जावे, तो फिर ये बाहर की संपदा जिसमें हम मिल जाने पर सुखी होते हैं, वियोग हो जाने पर दुखी हो जाते हैं, उससे हम बच जाएंगे। कुछ लोग एक शहर में रहते थे, पहले एक शहर का एक राजा होता था, वही उसका राज्य कहलाता था। छोटे छोटे शहरों के भी रियासतों के राजा हुआ करते थे, वही उनका राज्य होता था, रैयत कहते थे। तो दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण करके उस राज्य को जीत लिया। अब राजा चाहता तो सब धनमाल छीन सकता था, लोगों को भी तकलीफ दे सकता था, लेकिन जीतने वाला राजा भला था। अब भला थोड़ा कहना पड़ रहा है, अब लड़ाई काय को होती अगर इतने भले हती तो, अब मनु ठीक है भाई, अब बाद में थोड़ी तो कहने पड़े कि आओ चलो फिर भी आप भले हो लड़के, आपने राज ले भी लिया लेकिन इतने ही भलाई का काम किया कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, और सबसे कहा कि देखो हमारी आज्ञा में रहना पड़ेगा इस राज्य में रहो तो, और जिसको हमारी आज्ञा में नहीं रहना सो अपनों जितो सामान सिर पे रख के ले जाया जा सके तो उतना लेके हमारा राज्य छोड़। और हम किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अब अधिकांश लोग तैयारी में हैं, बांध रहे हैं सामान जितनों ज्यादा बांध सकें। अब भगवे की स्थिति में तो जय बनती है। देखो आप, संसार से विदा कोई होने लगे तो संसार की ही चीजें इकट्ठी करके विदा लेना चाहता है। बताओ, माने संसार भीतर रखे संसार से विदा हो सकता कोई? आज तक तो जो ही करो पन्ने ही से तो फिर से नहीं आ गए। संसार से विदा भी ली तब भी एक संसार भीतर राग द्वेष कर लेके यहां से दूसरी जगह गए, वे भी वही कर रहे हैं। सो सब ने बांध लिया, बांध करके उठा तो नहीं बन रहा, सो दूसरे से उठवा के धर लो, दो इतर लटकाए कंधा पे, एक रखो माथे पे, अब चले जा रहे हैं। एक तो जो लेकर के आए हैं सामान उसका बोझ सिर पर सहा नहीं जा रहा, और जो ला नहीं पाए हैं उसकी पीड़ा भीतर झेली नहीं जा रही, किसी बात का सुख नहीं है। हैं? जितना बांध के लाए हैं वो इतना ज्यादा है कि उसका बोझ सिर पर सहा नहीं जा रहा, और वो जो साथ में आया है उसका कोई सुख नहीं है, क्योंकि जो जो छूट गया है उसकी भारी पीड़ा है कि वो मकान उतना ही रहेगा और लिया तो इतना ही सो पाए। ऐसा ही होता है अपन सबके साथ, ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि हमने पांच इंद्रिय और मन के विषयों को ही अपनी संपदा मान रखा है, तो उसके संयोग वियोग में ही हर्ष विषाद करते हुए जीवन व्यतीत कर अत्यंत प्रसन्न है। अब मन ही मन क्या सोच रहे हैं लोग कि लगता है कि थोड़ो हां, जो इस संसार के बीच में और संतोष पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जिए, सो अपन को थोड़ो ढीलो मालूम पड़ता। सीधा सच्चा जीवन जीने वाला तो इस संसार में असफल जान पड़ता है, अभावग्रस्त जान पड़ता है। कमती सामग्री में अपना जीवन जीने वाला, अल्पतम ग्रहण करने वाला यहां पर दीनहीन और दरिद्र जान पड़ता है। क्या करें, सबके मन में यही आया कि अरे इसकी बुद्धि फिर गई है, लगता है कि बहुत पीड़ा की वजह से और दिमाग खराब होने से ऐसा पागलपन में हंस रहा है। वरना हंसने का कोई अवसर है? कितना तो छोड़ के आना पड़ा, और ये जो सिर पे रखा हुआ है उसका बोझा कितना है, इसमें हंसने का तो कुछ काम ही नहीं। और ये इतना प्रसन्न, तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई अपने साथ कुछ भी नहीं लाए? कोई कितने भी गरीब होए पर थोड़ो सो सामान तो के पास भी रहे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? क्या कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास? कहते सब तो है मेरे पास। अब तो बिल्कुल पक्को हो गए, कोई गाओ काम से बिल्कुल पक्का ही हो गया, अब कछु दिखा है नहीं रहो और कह रहो कि सब तो है। अरे सिर पर तो एक भी नहीं, हाथ में कुछ लिए नहीं, कहता कि सब कुछ है मेरे पास। फिर पूछा, जिज्ञासा तो फिर भी रही कि नहीं हम भले ही सोच रहे हैं लेकिन बात कुछ और लगती है। तो फिर उससे पूछा कि भाई ऐसी विपत्ति की अवस्था में भी तुम इतने शांत और इतने प्रसन्न कैसे हो? उसने कहा, सुनो, जो मेरा है वो खो नहीं सकता, और जो खो गया है वो मेरा हो नहीं सकता। ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना जीवन जीने का मेरा अपना ढंग है। बताइए, जो अगर वास्तव में मेरा है क्या उसको खो देने की पीड़ा हो सकती किसी को? और जिसको खो देना पड़े अपनो मान रहते हाथों ने, हो तो खो तो काय को? इतना छोटा सा सूत्र है लेकिन जीवन भर इसे हम अपने अंदर विचार में बनाए रखें, तो छोटी छोटी सी विपत्तियों को तो आसानी से हम हर्ष पूर्वक पार कर लेंगे भैया इतने से सूत्र से कि ठीक है अब कल तक हतो अब नहीं है चलो खत्म को झगड़ा में पड़े। यह ऐसा भाव भी अपने भीतर धीरे धीरे आने लगे तो संसार से हम आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि ये सब कारण राग द्वेष उत्पन्न करने के हैं और उसी का नाम संसार है। जो इन राग द्वेष के और हर्ष विषाद के कारणों से जितना बच जावे भैया समझ लो कि वो इस संसार में रहते हुए भी संसार से बच गया। आचार्य महाराज कहते कि संसार में रहो लेकिन संसार हमारे भीतर न रहे। इतना भी अभ्यास कोई कर ले वे निरंतर ये अभ्यास करने से ही और हम अपने जीवन में उतनी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं जो तीर्थंकर प्राप्त करते हैं। हम भावना भाएं अभीक्षण संवेग की कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता
हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो
करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में
हम तारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फूल झड़ियां
बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मैया
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरु पर प्रणाम मिथ्या तम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आप पर वास विको भानु सेवा कानी है
छाहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है
अनुभवताय विको जीवो के जताय विको काऊ न सताय विको
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है
या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदी पशु धूप फल अर्घ कई
धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि
ओम
ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के पावन चरणारविंदों को अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामीति।
भाव धरे जीव है तुम प्रसाद से हो मुझे वह शक्तिनाथ जिससे तुम प्रसाद से हो मुझे वह शक्तिनाथ जिससे अपनी शुद्ध अतुल बलशाली चेतन को धन से अपनी शुद्ध अतुल बलशाली चेतन को धन से पृथक कर सकूं पूर्णतया मैं पृथक कर सकूं पूर्णतया मैं जो उदाहरण में पृथक कर सकूं सती मेरी उस कृति को कृपया क्षमा करे, सरस्वती मेरी उस कृति को कृपया क्षमा करे। और मजी के लोग काम में मार लंब करे, मुझी के वन्य धाम में मार लंब धरे।
Thank you.